नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द कॉन्फिडेंस कोड। पत्रकार कैटी के और क्लेयर शिपमैन की शोध आधारित नॉन फिक्शन पुस्तक है, जो आत्मविश्वास को केवल व्यक्तित्व की चमक या लगातार सही निर्णय लेने की क्षमता मानने से इनकार करती है। इसका केंद्रीय प्रश्न यह है कि पर्याप्त योग्यता और उपलब्धियों के बावजूद विशेषकर अनेक महिलाओं में अपने निर्णयों, आवाज और अवसरों पर भरोसा कम क्यों रह जाता है। लेखिकाएं तंत्रिका विज्ञान, आनुवंशिकी, मनोविज्ञान और व्यवहार संबंधी अध्ययनों को कार्यस्थल तथा निजी जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ती हैं। पुस्तक का तर्क है कि आत्मविश्वास का कुछ संबंध स्वभाव और जैविक प्रवृत्तियों से हो सकता है, लेकिन वह अपरिवर्तनीय गुण नहीं है। जोखिम उठाने, बोलने, निर्णय लेने और गलतियों से सीखने की आदत उसे विकसित कर सकती है। यह पुस्तक महिलाओं के आत्मविश्वास अंतर को अपना प्रमुख विषय बनाती है, फिर भी इसका व्यावहारिक ढांचा उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो अत्यधिक आत्मसंदेह, पूर्णतावाद या निर्णय टालने की प्रवृत्ति को समझना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, योग्यता और आत्मविश्वास के बीच का अंतर अवसरों को कैसे प्रभावित करता है। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण आधार यह है कि योग्यता और आत्मविश्वास एक ही चीज नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भूमिका के लिए ज्ञान, अनुभव और क्षमता रख सकता है, फिर भी वह आवेदन करने, बैठक में बोलने, वेतन पर बातचीत करने या नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने से रुक सकता है। लेखिकाएं विशेष रूप से कार्यस्थल में उस अंतर पर ध्यान देती हैं, जहां महिलाएं अपनी तैयारी का अधिक कठोर मूल्यांकन करती हैं, जबकि पुरुष अपेक्षाकृत अधूरी तैयारी में भी आगे बढ़ने को तैयार हो सकते हैं। यह अंतर किसी एक व्यक्ति की कमी भर नहीं है, क्योंकि सामाजिक संकेत भी महिलाओं को विनम्र, सहयोगी और गैर आक्रामक बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। परिणाम स्वरूप, अपनी उपलब्धि बताना या दृढ़ता से असहमति रखना कई महिलाओं को अनुचित जोखिम जैसा लग सकता है। पुस्तक यह नहीं कहती कि हर पुरुष आत्मविश्वासी और हर महिला संकोची होती है। इसका उद्देश्य औसत व्यवहारों और उनके पेशेवर परिणामों को समझना है। जब अवसर अक्सर उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो स्वयं को दृश्यमान बनाता है, तब क्षमता का शांत रह जाना एक संरचनात्मक समस्या बन जाता है। इसलिए समाधान केवल बेहतर कौशल अर्जित करना नहीं, बल्कि पर्याप्त सक्षम होने पर भी आगे आने की व्यवहारिक अनुमति स्वयं को देना है। दूसरा, आनुवंशिकी, मस्तिष्क की लचीलेपन क्षमता और सीखे जा सकने वाले आत्मविश्वास का तर्क, द कॉन्फिडेंस कोड। आत्मविश्वास को पूरी तरह जन्मजात या पूरी तरह इच्छा शक्ति से निर्मित मानने दोनों सरल निष्कर्षों से बचती है। लेखिकाएं आनुवंशिकी और मस्तिष्क संबंधी शोध का सहारा लेकर बताती हैं कि स्वभाव जोखिम के प्रति संवेदनशीलता और चिंता की प्रवृत्ति में जैविक घटक हो सकते हैं, लेकिन पुस्तक का अधिक उपयोगी निष्कर्ष मस्तिष्क की लचीलेपन क्षमता से आता है। अनुभव और दोहराया गया व्यवहार मस्तिष्क के काम करने के ढंग को बदल सकते हैं। इस कारण आत्मविश्वास को स्थिर पहचान के बजाय अभ्यास से मजबूत होने वाली क्षमता के रूप में देखना संभव है। इसका अर्थ यह नहीं कि डर समाप्त हो जाएगा या हर व्यक्ति एक जैसा व्यवहार करने लगेगा, बल्कि व्यक्ति डर या अनिश्चितता के बावजूद छोटे नियंत्रित कदम उठाना सीख सकता है। उदाहरण के लिए, निर्णय को अनंत विश्लेषण में रोकने के बजाय उपलब्ध जानकारी पर एक समयबद्ध चुनाव करना, फिर उसके परिणाम की समीक्षा करना, निर्णय लेने की क्षमता को ठोस अनुभव देता है। पुस्तक का वैज्ञानिक पक्ष आत्मदोष को कम करता है, क्योंकि वह बताता है कि संकोच के पीछे केवल चरित्र की कमजोरी नहीं होती, साथ ही वह निष्क्रियता का बहाना भी नहीं बनाता, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन के लिए जगह बनी रहती है। तीसरा, कार्यवाही और सीमित जोखिम आत्मविश्वास पैदा करते हैं, प्रतीक्षा नहीं। पुस्तक का व्यावहारिक सिद्धांत है कि आत्मविश्वास प्रायः कार्यवाही का परिणाम है, उसकी पूर्व शर्त नहीं। लोग अक्सर यह मानते हैं कि पहले पूरी तरह तैयार, निडर या निश्चित महसूस करना चाहिए और उसके बाद कठिन कदम उठाना चाहिए। लेखिकाएं इस क्रम को उलटती हैं। उनके अनुसार जोखिम लेने, प्रयास करने और असुविधाजनक परिस्थितियों का सामना करने से व्यक्ति को यह प्रमाण मिलता है कि वह परिणाम संभाल सकता है। यही अनुभव भविष्य के निर्णयों में भरोसा बढ़ाता है। यहाँ जोखिम का अर्थ लापरवाही नहीं है। बेहतर तरीका ऐसा कदम चुनना है जिसमें चुनौती हो, पर विफलता की कीमत विनाशकारी न हो। किसी बैठक में एक प्रश्न पूछना, नई जिम्मेदारी के लिए नाम देना या लंबे समय से टाले गए संवाद की शुरुआत करना, ऐसे अभ्यास हो सकते हैं। यदि परिणाम अपेक्षा के अनुसार न आए तो उसे व्यक्ति की स्थायी अक्षमता का फैसला मानने के बजाय सूचना की तरह देखना आवश्यक है। पुस्तक विफलता को सीखने की प्रक्रिया से जोड़ती है, क्योंकि गलतियों से बचने की तीव्र कोशिश व्यक्ति को अनुभव से भी दूर कर देती है। इस दृष्टि में आत्मविश्वास का मतलब सफलता की गारंटी नहीं, बल्कि अनिश्चित परिणामों के बीच भी सीखने और दोबारा प्रयास करने पर भरोसा है। चौथा, नकारात्मक स्वचालित विचारों को पहचानना आत्मसंदेह की पकड़ कम करता है। लेखिकाएं आत्मविश्वास को कमजोर करने वाले आंतरिक संवाद पर भी ध्यान देती हैं और नकारात्मक स्वचालित विचारों, जिन्हें वे नेट्स कहती हैं, की चर्चा करती हैं। ये वे तेज आदतन और अक्सर बिना जांचे स्वीकार कर लिए गए विचार हैं, जैसे मैं पर्याप्त तैयार नहीं हूँ, लोग मुझे अयोग्य समझेंगे, या एक गलती से मेरी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। समस्या केवल नकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह है कि ऐसे विचार अनुमान को तथ्य का रूप दे देते हैं। फिर व्यक्ति बोलने, निर्णय लेने या अवसर स्वीकार करने से बचता है और उसे अपनी क्षमता के विपरीत अनुभव ही नहीं मिल पाता। पुस्तक का निहित व्यावहारिक आग्रह विचार को दबाना नहीं, बल्कि उसकी जांच करना है। व्यक्ति पूछ सकता है कि इस निष्कर्ष के पक्ष में वास्तविक प्रमाण क्या है, क्या वह पूर्णतावादी मानदंड लागू कर रहा है और सबसे संभावित परिणाम वास्तव में कितना गंभीर है। यह जांच अति आत्मविश्वास पैदा करने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य खतरे के यथार्थ आकलन और मन की तत्काल आशंका में अंतर करना है। जब व्यक्ति अपने आंतरिक आलोचक को अंतिम सत्य के बजाय एक मानसिक आदत की तरह देखता है, तब निर्णय के लिए अधिक जगह बनती है। इस तरह संज्ञानात्मक सजगता व्यवहारिक कदमों के साथ मिलकर आत्मविश्वास निर्माण का आधार बनती है। अंत में, महिलाओं के लिए आत्मविश्वास का प्रश्न व्यक्तिगत सुधार के साथ सामाजिक संदर्भ का भी प्रश्न है। द कॉन्फिडेंस कोड का विशिष्ट योगदान यह है कि वह आत्मविश्वास को केवल निजी विकास की परियोजना नहीं बनाती। पुस्तक यह जांचती है कि महिलाओं को अक्सर विरोधाभासी अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। उनसे सक्षम और महत्वाकांक्षी होने की अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन वही दृढ़ता यदि बहुत प्रत्यक्ष दिखे तो उसे अप्रिय या आक्रामक भी कहा जा सकता है। ऐसे सामाजिक संकेत जोखिम लेने की लागत बढ़ा देते हैं, इसलिए महिलाओं का अधिक सावधान व्यवहार हमेशा क्षमता की कमी या महत्वाकांक्षा की कमी का प्रमाण नहीं होता। यह उस वातावरण के प्रति अनुकूलन भी हो सकता है जिसमें गलती, दावे या असहमति को अलग कसौटी पर परखा जाता है। पुस्तक फिर भी व्यक्तिगत एजेंसी को महत्व देती है। वह महिलाओं को अपने योगदान के बारे में स्पष्ट बोलने, अधूरी निश्चितता में भी अवसर लेने और असफलता के भय को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि संस्थाओं की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। प्रबंधकों और संगठनों को भी यह देखना चाहिए कि किसकी आवाज को विश्वसनीय माना जाता है, किसे चुनौतीपूर्ण काम मिलता है और किस व्यवहार को नेतृत्व कहा जाता है। यही दोहरा दृष्टिकोण पुस्तक को केवल व्यक्तिगत प्रेरणा से अलग बनाता है। वह व्यवहार परिवर्तन और कार्यस्थलीय संस्कृति दोनों को आत्मविश्वास अंतर के हिस्से के रूप में रखती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो योग्यता होते हुए भी निर्णय टालते हैं, अपनी उपलब्धियों को कम करके आंकते हैं या जोखिम लेने से पहले असंभव स्तर की निश्चितता चाहते हैं। कामकाजी महिलाएं इसका मुख्य पाठक वर्ग हैं, क्योंकि पुस्तक पेशेवर उन्नति में आत्मविश्वास अंतर और उससे जुड़े सामाजिक दबावों को सीधे संबोधित करती है। फिर भी प्रबंधक, कोच, शिक्षक और पुरुष पाठक भी इससे लाभ ले सकते हैं, खासकर यदि वे समझना चाहते हो कि समान क्षमता हमेशा समान भागीदारी में क्यों नहीं बदलती। इसका व्यावहारिक लाभ किसी तात्कालिक व्यक्तित्व परिवर्तन का वादा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास को व्यवहारों में तोड़कर देखने में है। छोटे जोखिम, कार्यवाही, त्रुटि से सीखना और नकारात्मक स्वचालित विचारों की जांच, ये सभी अपनाए जा सकने वाले अभ्यास हैं। बौद्धिक स्तर पर पुस्तक यह उपयोगी सुधार करती है कि आत्मविश्वास को केवल सकारात्मक सोच या जन्मजात करिश्मे से नहीं समझा जा सकता। समान श्रेणी की कई पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान वैज्ञानिक शोध, पत्रकारिता आधारित उदाहरणों और लैंगिक सामाजिक संदर्भ के संयोजन में है। कुछ शोध और उदाहरण अपने प्रकाशन काल के कारण पुराने लग सकते हैं, इसलिए इसे अंतिम वैज्ञानिक निर्णय के बजाय एक सुलभ विचारोत्तेजक ढांचे के रूप में पढ़ना उचित है। फिर भी इसका केंद्रीय संदेश प्रासंगिक है। आत्मविश्वास पहले महसूस होने वाली चीज कम और सोच समझकर कार्य करने से विकसित होने वाली क्षमता अधिक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कैटी के, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।